ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी विराजमान हैं। हम सभी आदरणीय भाई साहब का एक हाथ की ताली से इस सभा में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका संक्षिप्त परिचय, आत्म प्रकाश भाई जी इस ज्ञान में 1972 में आए। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 में एमएससी स्वर्ण पदक से प्राप्त की। सन 1976 में माउंट आबू, अब जो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, यहाँ पर आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। आपने भारत के अनेक प्रांतों में जाकर के राज्यों पर क्लासेस और रेडियो दूरदर्शन पर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज समय प्रति समय प्रसारित होते रहते हैं। आपकी विशेषता राजयोग गहन अध्ययन स्वयं भी करना और दूसरों को भी कराना है। आपने विश्व के पांचों ही महाद्वीप अर्थात अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, लगभग 88 देशों का भ्रमण किया है। आपने ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचाया है और राजयोग की शिक्षाएं अनेक आत्माओं को देकर उनके जीवन में ये सुख शांति प्राप्त कराई है। आप युवा प्रभाग के नेशनल वाइस चेयरपर्सन हैं और ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति वन, इन तीनों परिसर जितने भी हैं यहाँ पर आप टोली विभाग संभालते हैं। जो आप सभी टोली खाते हैं वो श्रेय हमारे आत्म प्रकाश भाई जी को जाता है। तो आज हम सबके बीच में हैं भाई साहब, और आज हमें भाई साहब बताएंगे कि स्मृति स्वरूप से समर्थि स्वरूप कैसे बने। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी,
ओम शांति। स्मृति स्वरूप से समर्थि स्वरूप बनना, हमारे यज्ञ में विशेष 18 जनवरी को स्मृति दिवस तथा समर्थि दिवस कहते हैं, क्योंकि उस दिन प्यारे बाबा की याद हमें सहज और निरंतर रहती है, जिससे समर्थि स्वरूप अर्थात सामर्थ्य से स्वयं को हम भरपूर करते हैं। इसलिए स्मृति सो समर्थि दिवस उसको कहते हैं। वास्तव में समर्थि स्वरूप अगर हमें बनना है तो उसके लिए आवश्यक है स्मृति स्वरूप बनना। एक है स्मृति करना और दूसरा है स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप बनना, अर्थात स्मृति नेचुरल अनुभव करना, स्मृति के स्वरूप में हम टिके रहना। इसलिए कहते हैं जैसे स्मृति वैसी हमारी स्थिति बनती है। ब्राह्मण जीवन में हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति बनाना। तो जैसी स्थिति होती है वैसी स्मृति होती है, जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है, और जैसी स्थिति बनती है वैसी हमारी दृष्टि बनती है, और जैसी हमारी दृष्टि बनती है वैसी हमारी वृत्ति बनती है, और जैसी हमारी वृत्ति बनती है वैसी हमारी कृति अर्थात कर्म नेचुरल बनते जाते हैं, और जैसी कृति होती है वैसे हमारे संस्कार हमारा स्वभाव नेचुरल बनता जाता है, हम शक्तिशाली स्वयं को अनुभव करते हैं। लेकिन शुरुआत होती है स्मृति से। अगर आपने सुना होगा सारे गीता का ज्ञान का सार केवल दो ही शब्दों में बताते हैं, स्मृति लब्धा नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। जितना हम नष्ट मोहा बनते हैं उतना स्मृति लब्धा अर्थात स्मृति में हम खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है नष्ट मोहा बनना, मोह को हमें नष्ट करना है। कृष्ण का नाम मोहन भी हम पुकारते हैं, मोहन अर्थात मोहना। तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति में रिंचक मात्र भी मोह नहीं था। तो हमें कृष्ण के साथ सतयुग में राज करना है तो उनके जैसा मोह न बनना होगा, मोह को नष्ट करना होगा। क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि यहां से डिटैच होती है उतनी बुद्धि हमारी बाबा से अटैच होती है। इसलिए इस संसार से हमें स्वयं को न्यारा अर्थात उपराम करना होगा। कहते हैं ऊपर वाले राम को अगर हमें याद करना है तो उपराम बनना होगा। उपराम अर्थात बिल्कुल न्यारे और प्यारे स्थिति की अनुभूति करना। इसके लिए हमें सदा एक बात बुद्धि में रखनी है, कौन सी? अब हमें घर वापस जाना है। जब बुद्धि में ये बात बैठ जाती है मुझे यहां से जाना है तो स्वतः ही बुद्धि रूपी लंगर यहां से उठने लगता है। कैसे जाना है उसकी तैयारी में हम लगे रहते हैं। हमें घर वापस जाना है भरतुहास से, झोली हमारी भरपूर हो, बेदाग हीरा बन के जाना है, कोई भी दाग मुझ आत्मा पर न रहे जो मेरी वैल्यू कम करें। ऐसा वेदाग हीरा बनकर मुझे घर वापस जाना है। तो इसलिए नष्ट मोहा स्वयं को अनुभव करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, हमें शिव बाबा की स्मृति में टिकना है, स्मृति का तिलक हमें सदा लगा रहे। माया उसको मिटाती है, हमें उसको लगा रहा अनुभव करना है। लेकिन समझने की बात है, बाबा को हमें क्यों याद करना जरूरी है, बाबा की स्मृति में क्यों टिके रहना है। क्योंकि हर मुरली में बाबा ये बात दोहराते हैं, मुझे याद करो, मेरी स्मृति में रहो। भाई क्यों बाबा को याद करें, ये बात भी हमारे बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि हमारा इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला एक बाबा ही है, दूसरा भाई ताली तो बजाओ जरा। तो ऊपर वाला हमारा सबसे कल्याण चाहने वाला है, इसलिए उसकी स्मृति में हमें सदा टिके रहना है। टिके रहना अर्थात टीका लगा रहना है। इस पर मैंने बहुत मंथन किया, क्यों हमें बाबा को ही याद करना है, क्यों किसी व्यक्ति वैभव को याद नहीं करना है। जवाब ये मिला कि इस संसार में आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत, सागर, पावर हाउस केवल एक बाबा ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। और वो सोर्स हमें मिला है, उस सोर्स के पास हम पहुंचे हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य की ये निशानी है। दुनिया उसको ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढ के अपने शीतल गोद में बिठा दिया है। जोर से बजाओ ना जरा, कमाल करे। ये कितनी भाग्य की निशानी है, सारा संसार उसको कहां कहां ढूंढ रहा है, और उसने हमें करोड़ों में से ढूंढ कर यहां लाकर अपनी शीतल गोद में, छत्र छाया में बिठाया है। ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इससे बढ़कर और चढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। अभी इस दुनिया में एक सिद्धांत है, एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाइयर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। एनर्जी हमेशा हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा में शक्तियां आती है, करंट आता है, ऊर्जा आती है। और जब हम किसी व्यक्ति और वैभव को याद करते हैं तो शक्तियां जाती है, शक्तियां खर्च होती है। अभी जमा करने का समय है, खर्च करने का समय नहीं है। एक स्लोगन याद रखना सदा, अगर जमा का खाता नहीं होगा तो हमारा मन खाता रहेगा, पश्चाताप करता रहेगा। इसलिए हमें जमा का खाता बहुत बढ़ाना है। और ये जमाना कैसा है, ये जमाना कैसा है, जमा ना, जमा होने ही नहीं देता है। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम आंखें फाड़ के चीजें देखते रहते हैं, बुद्धि बाबा की तरफ नहीं जाती है, इधर ही भटकती मटकती रहती है। इसलिए स्मृति स्वरूप अगर बनना है, उस प्यारे बाबुल की याद में सदा खोए रहना है, तो पांच बातें मैं अनुभव के आधार से आपके सामने रखता हूं। उन पांच बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो गारंटी है आपके स्मृति का ग्राफ ऊंचा ही ऊंचा बनता जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए सबसे पहली बात है हमें असली स्वरूप में टिकना होगा, सत्य स्वरूप में अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा। सबसे पहली बात है आत्मिक स्मृति में टिकना और दूसरी बात है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। जब आत्मा की स्मृति आती है तो परमात्मा के तरफ हमारी बुद्धि स्वतः ही चली जाती है। जब देह का भान होता है तो बुद्धि देह की दुनिया में, देह के पदार्थों में और देह के संबंधों के पीछे ही भटकती जाती है। तो आत्मा का अनुभव हमें बहुत सहज और सरल रीति से करते जाना है। आपको असली घी अच्छा लगता है या नकली घी अच्छा लगता है भाई, बोलो बोलो ना। नकली घी लाएगा ना फेंक देंगे, क्यों मेरे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो असली घी चाहिए। भाई नकली स्वरूप हमारा ये झूठा स्वरूप देह स्वरूप है और असली स्वरूप हमारा आत्मा का है। तो झूठे स्वरूप को छोड़ के हमें सत्य स्वरूप में टिकना है और सत्य स्वरूप का आनंद हमें लेना है तो सत्य बाप की याद स्वतः ही हमें रहेगी। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा को देखना है और उसमें स्थित रहना है और अभ्यास में खोए रहना है। ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास को बहुत घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया तब पहला नंबर लिया। तो हमें भी इस बात में बाबा को फॉलो करना है तभी हम बाबा जैसी श्रेष्ठ स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होंगे। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। बाबा की याद आती है, विक्रम हमारे खत्म होते हैं। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये माया की प्रॉपर्टी है, ईश्वर की प्रॉपर्टी ये आत्मा है। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। तो जब हम ज्योति स्वरूप अनुभव करते हैं तो माया रूपी शेर दूर से ही भागता है। इसलिए हमें आत्मा के स्वरूप को हमें बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। दूसरी बात, समान के सिंहासन पर डटे रहना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, सभा में जितने भी बैठे हैं बहुत ऊंची बहुत रॉयल आत्माएं सभी बैठी है। ये रॉयल आत्माओं की सभा है, ताली तो बजाओ जरा। कई कहते हैं भाई बाबा के बच्चे बड़े सिंपल होते हैं। सिंपल तो होते हैं लेकिन भगवान के द्वारा करोड़ों में सिलेक्शन उनका हुआ है, साधारण नहीं है वो आत्माएं। क्योंकि अभी सिंपल से सैंपल बनेंगे, सैंपल से एग्जाम्पल बनेंगे और जब घर वापस जाएंगे, घर से जैसे नीचे राजधानी में आएंगे बहुत बड़ा ऊंचा स्टेटस हम सभी को मिलेगा। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। जो दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्ति होता है वो सिंहासन पर बैठता है। हम बच्चों को भी बाबा ने सिंहासन दिया है समान का, उस पर हमें बैठना है। और स्वयं को आत्मा को राजा अनुभव करके अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राजा करना है, शासन करना है, नियंत्रण करना है। जो स्वयं का राजा बनता है वही सतयुग में औरों का राजा बनता है, लेकिन उसके लिए समान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है। हर रोज बाबा हमें मुरली में इस सिंहासन पर बिठाते हैं और माया उससे उतार देती है, लेकिन माया कुछ भी करें हमने ये सिंहासन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है। भगवान ने इतने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, माताओं को बाबा ने कहा है तुम शिव शक्तियां हो, तुम जगदम्बा हो, तुम दुर्गाएं हो, तुम महाकालिया हो, अनेक आत्माओं की काली माँ को मिटाने वाली महाकालिया हो। भाइयों को भी कितने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम विजय आत्मा हो, तुम भगवान के नैनों के नूर हो, तुम जहान के नूर हो। तो कोई भी टाइटल समान का आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो सारे दिन भर में हमारे चेहरे पर वो ईश्वरीय नशे की मस्ती ऑटोमेटिक छाई रहेगी। दुनिया में कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर सारी दुनिया के कारोबार चलती हैं, उस हस्ती को हमने पाया है, इसलिए हमारे चेहरे पर ऐसी मस्ती भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता मेरा बाप है कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल मेरा बाप वो कहलाता है। तो ऐसी अनुभूति हमें करना है, समान के सिंहासन पर डटे रहना है। कोई आपका अपमान भी करे तो भी आपने ये सीट को छोड़ना नहीं है। भगवान से हमें मान मिला हुआ है, आत्माओं से मान मिले न मिले मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, तो अपनी मस्ती में हम मस्त रहे। तीसरी बात, ऐसी स्मृति स्वरूप की स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए बाबा के प्रति हमारा दिल का प्यार बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आप कहेंगे हमारा प्यार तो बाबा से है इसलिए सभी आप यहाँ भगवान के दर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उससे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्यार हमारा जिगरी प्यार हो, हड्डी प्यार हो, दिल का प्यार हो। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन दिल का अंदर का प्यार, सच्चा प्यार केवल उसके साथ ही हमें शेयर करना है। हमने देखा हमारी दादियां, हमारी दीदियां बड़ी जो है उनका जिगरी प्यार बाबा से है और बाबा से था, वो भी हमने देखा। इसी स्टेज पर जब बाप दादा से दादियां मिलती थी, भगवान से मिलती थी, तो भगवान उन पर फिदा होते थे, उनको बाहों में समा लेते थे और वो भी बाबा को बाहों में समा लेते थे। सारी दुनिया टीवी के द्वारा उनको देखती थी। क्या था उनके पास, जानकी दादी का तो स्लोगन एक पक्का था, सफेद कपड़े जेब खाली और हम हैं जगत के वाली। आप देखो सारे संसार के मालिक हैं हम। तो इसलिए हमें बाबा से जिगरी प्यार होना चाहिए, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां तार हमारी स्वतः ही जुट जाती है, जुटी रहती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जिससे बहुत प्यार होता है उसकी याद हमें सताती है, याद करनी नहीं पड़ती है, सताती है। तो उस बाबा से बढ़कर हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा जिगरी प्यार उसके साथ ही रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चों ने हर कला बाबा से प्यार शेयर किया, उसका बहुत सुंदर उदाहरण भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं था, मुट्ठी चावल बची थी। उसने कन्हैया को दी, कन्हैया ने उसको तथास्तु कह के कितना सारे खजाने, कितना माला माल कर दिया। ये सुदामा कोई होकर नहीं गया, ये सारे सुदामा यहाँ बैठे हैं, ये सारे सुदामा यहाँ बैठे हैं। सुदामा, अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना दिल का प्यार दिया और एक ही जन्मों की बादशाही मिल गई और कितने सारे अनाप शनाप बेहिसाब प्रॉपर्टी हमें एक ही जन्मों के लिए मिलती है। इतना प्यार हम देते हैं बाबा को, इसलिए बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास है क्या? बेघर माना बेघर, ये घर भी किराए से लिया है। जो बहुत गरीब होते हैं वो भगवान से करीब होते हैं। दुनिया में गरीब किसको कहते हैं? जिसको रहने का भी घर नहीं होता है उसको गरीब कहते हैं। तो इस देह रूपी घर को हम जब भूल जाते हैं तो एकदम गरीब हो जाते हैं और भगवान के करीब अनुभव करते हैं, बहुत समीप अनुभव करते हैं। बाबा के और हमारे बीच में केवल एक छोटी सी दीवार है देह के भान की। उस दीवार को आप हटा देते हैं तो भगवान के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है, स्मृति स्वरूप हम बनते जाते हैं। इसलिए हमें बाबा से जिगरी प्यार बढ़ाना है। चौथी बात, स्मृति स्वरूप बनना है तो सारे दिन भर में हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। क्योंकि सारा दिन हम कारोबार में रहते हैं लेकिन हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करना है, दिल उस यार के पास बाबा के पास हमें रखना है। उसके लिए सारे दिन भर में बाबा को हमने विभिन्न संबंधों के द्वारा याद करते जाना है। बाबा सामने से कह रहे हैं 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, वो आप पर है भाई। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, चारों सारे क्लब में हमें एक ही बार मौका मिलता है। इस मौके का पूरा फायदा हमने लेना है, एक एक पल को हमने सफल करना है और उसकी स्मृति में हमें टिके रहना है। इसलिए बाबा को हमने फ्री छोड़ना ही नहीं है। जो बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, भाई केमिस्ट्री में दिल भर गई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में दिल भर गई वो और दूसरे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे हमने सारे दिन भर में बाबा को टीचर के रूप में, सखा के रूप में, माँ के रूप में, सजन के रूप में, अलग अलग संबंधों में याद करना है, उसमें रुचि बरकरार रखना है। फ्री हमने बाबा को नहीं छोड़ना है। इसलिए बस बाबा 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 कहते रहें और दिल उसके दिलाराम के पास सदा रहे, यही हमारी तड़पन सदा दिन भर में लगी रहे। क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा नवीनता चाहता है अपने जीवन में। हमें भी स्मृति में नवीनता अगर होगी तो उसमें हमारी रुचि सदा बरकरार रहेगी और बढ़ती ही रहेगी। इसलिए हमें बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करना है ताकि इस दुनिया में जिससे भी हमारे संबंध जुड़े रहते हैं, बुद्धि थोड़ी सी लगाव झुकाव में होती है, वो भी समाप्त हो जाती है और हमारा बाबा ही एक संसार हमें अनुभव होता है। संसार में रहते हुए एक बाबा मेरा संसार हो ऐसा हमें अनुभव करते रहना है, क्योंकि बाबा को पारसनाथ कहते हैं। वो ऐसा नाथ हैं, वो जो सर्व रसों का भंडार हैं, सर्व प्राप्तियों का भंडार हैं, सर्व संबंधों की वो शकरीन हैं। इसलिए बस ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर हमने रहना है, और जो भी प्राप्तियां हमें प्राप्त करना है उसी से ही हमने प्राप्त करते जाना है। क्योंकि द्वापर युग से हमने भक्ति को बहुत भटकाया, छोटी सी प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी हमें अपनी बुद्धि पर रहम करना है और उसको भटकाने से बचाना है और एक ही ठिकाने पर बैठना है। कृष्ण को ठाकुर कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संगम युग में एक ही ठिकाने पर बुद्धि को लगा पर बाबा से अनेक प्राप्तियां करके स्वयं को माला माल कर दिया, मास्टर भगवान के रूप में अपनी स्थिति को बनाया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को इस रूप में याद करना है। पांचवी बात है, स्मृति स्वरूप अगर हमें बनते जाना है तो उसके लिए वर्षे को कभी भूलना नहीं है। कोई भी हम काम करते हैं ना, काम करने के पहले सोचते इससे मुझे मिलेगा क्या। अब बाबा ने इतना बड़ा लड्डू दिया है जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, 21 जन्मों की बादशाही, इतना बड़ा लड्डू और संगम पर इतने खजाने, दुनिया में कोई भी ऐसा प्राप्ति का लड्डू हमें दे नहीं सकता है। लेकिन माया भी हमें ईर्ष्या जलती है, माया भी कहती है मेरे पास आओ मैं तुम्हें लड्डू देती हूँ, आओ मेरे पास। वो जलती है, भगवान इसको लड्डू दे रहा है ये तो लट्टू हो गया, मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो माया हमें प्रलोभन करती है, कौन सी भाई, दो लड्डू माया के है बोलो ना कौन से है, रूप और रुपया, ये माया के लड्डू है, ये हमने स्वीकार नहीं करना है। माया को बोलना है बहुत कुछ तुमने हमको सताया, अभी तुम हमें सता नहीं सकती है, हमें हमारे बाप ने बहुत बड़ा लड्डू दिया है तुम क्या मुझे देगी। इसलिए हमें बाबा से याद करना है और वर्षे को भी याद करना है। इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि जिससे प्राप्ति होती है उससे प्यार होता है, और जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति सताती है। इसलिए वर्षे को भी याद करना है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, पुरुषार्थ करते करते उसमें ढीलापन आता है, शिथिलता आती है। कारण क्या है, वो वर्षे को हम भूल जाते हैं। इसलिए बीच बीच में मद्याजी भाव के मंत्र का भी जाप करते रहें, मनमना भाव का भी जाप करते रहें, तो उसमें क्या होगा, ये जो स्मृति हम बाबा को कर रहे हैं उसमें तीव्रता बनी रहेगी। इसलिए सदा बाबा को मस्ती में याद करते जाना है। हम याद को उल्टा कहते हैं दया, दया के सागर के बच्चे हैं। अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं तो खुद पर भी दया नहीं करते हैं, जो खुद पर भी नहीं दया करे वो और ऊपर क्या करेगा भाई। इसलिए जितना हम बाबा को याद करते हैं, खजाने लूटते हैं, उतना हम स्वयं पर दया करते हैं और अनेक आत्माओं पर भी दया कर सकते हैं। इसलिए हमारी रेस भी किस में है, इस सारे ब्राह्मण संसार की आत्माओं रूपी घोड़े की रेस है। भगवान की मेहरबानी हमारे पर हुई जो हमें भी इस रेस में सम्मिलित किया। तो रेस योग में है, स्मृति में हमारी रेस है। इस रेस में हमें केवल दौड़ना नहीं है, लेकिन केवल हमें विनर बनना है, प्राइज विनर बनना है, ऐसा लक्ष्य हमें रखना है और तीव्रता से हमें आगे बढ़ना है। फिर आप देखेंगे इतना मजा आपको आएगा, मजा आएगा बात मत पूछो। कभी कि किसी से मिलते हैं ना, पूछते भाई कैसे हो, मजा है? अब मजा नहीं तो क्या होगा भाई, मजा का उल्टा क्या है? जाम। अब गाड़ी के चक्का ही जाम है तो क्या मजा होगी बताओ। इसलिए जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो रूहानी मौजों में सदा उड़ते रहते हैं और बाबा से खजाने लूटते रहते हैं। अभी स्मृति से समर्थि कौन सी अनुभव करते हैं? समर्थि अर्थात स्वयं को सामर्थ्य से भरपूर, शक्तियों से भरपूर जब करते हैं तो कुछ एक उपलब्धियां हमें अपने जीवन में होने लगती है। सबसे पहली उपलब्धि, जब स्मृति स्वरूप बनते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता की शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा समझकर सबको आत्मा देखने की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। दूसरा लाभ, जब समर्थि बढ़ती है तो स्थिति अचल अडोल हमारी रहती है। मधुबन में हम जब जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की शांति स्तंभ के रूप में अचल अडोल स्थिति रहती है, तो हमें भी शक्तिशाली स्थिति अनुभव करना है। अगर समर्थि स्वरूप नहीं बनेंगे तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी और हम हलचल में आते रहेंगे। माया हमें नचाए, माया हमें हलचल में लाए, भगवान के हम बच्चे, ये हो नहीं सकता है। इसलिए स्थिति से शक्तिशाली बनकर अचल अडोल स्थिति हमें बनाना है। तीसरी उपलब्धि है, जब हम समर्थि स्वरूप अनुभव करते हैं तो फरिश्ता स्थिति के समीप हम जाते हैं। फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती है क्योंकि फरिश्तों के पास शक्ति के खजाने भरपूर होते हैं। वो सारे संसार की आत्माओं को बांटने में सक्षम होता है, इसलिए फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती है जैसे जैसे हम समर्थ स्वरूप में टिकते जाते हैं। और चौथा लाभ ये होता है, जब समर्थ स्वरूप हम बनते जाते हैं तो मनसा सेवा करने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। अभी आगे चलकर मनसा सेवा का बोलबाला होगा, उसके पहले हमने चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। जब समर्थि स्वरूप बनते हैं तो चलन और चेहरे में भी वो अलौकिकता छलकने लगती है, उससे भी बहुत अच्छी सेवा होती है। तो हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, सागर के बच्चे, मास्टर सागर बच्चे हम सभी यहाँ बैठे हैं, सागर के बच्चे, मास्टर सागर बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो सागर के बच्चों को, अनेक आत्माओं को शक्तियों का, शांति का दान देना होगा और अनेक आत्माओं की दुआओं को प्राप्त करना होगा। इसलिए समर्थि स्वरूप को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। इसलिए सदा याद यही रखें, बस मुझे यही तात लगी रहें कि मुझे अपने योग को, अपने स्मृति को अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। स्मृति का तिलक मुझे सदा लगा रहे हैं, कभी वो मिटे नहीं। तिलक है तो मेरा लग जगा हुआ है, ये स्मृति का तिलक लगा हुआ है तो मेरी, भगवान के, मेरे साजन के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तिलक नहीं तो तलाक है, तिलक नहीं तो मेरा लक सोया हुआ है, तिलक लगा हुआ है तो मेरा लक जगा हुआ है। इसलिए स्मृति का तिलक सदा लगा रहे, इसी पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने जा रहे हैं, इसलिए नाश्ता बढ़िया करने के बाद सभी बैठे हैं, सुस्ती जरूर आती है, तो सुस्ती को भगाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, और सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, बिल्कुल खो जाएंगे हम अपनी दुनिया में, अपने बाबुल के पास एकदम झूमते हुए खोए रहेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। स्वयं भगवान ने मेरे मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा दिया है। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। क्या कहने मेरे भाग्य का। सारा संसार जिस भाग्य विधाता के गुणगान करता है। ओ भाग्य विधाता, हर रोज मुरली में मेरे महिमा के गीत गाता रहता है। मैं पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य कोटिया से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, इस साकारी दुनिया से पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद। दिव्य प्रकाश प्रकाश है। महज ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों की शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार के सागर शक्तियों के सागर बाप दादा मुझ फरिश्ते को स्मृति का तिलक लगा रहे हैं और मुझसे वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे स्मृति स्वरूप बाबा बाप दादा के दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भाव के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिक्किले दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो तो कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो। मेरे परम शिक्षक हर रोज दूर देश से आकर मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। मुझसे अपने टीचर पर नाज है। मेरे दिल तक नसीन बच्चे हैं। कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो, मेरा वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करो, मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से मालामाल कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओहो, मेरे प्राण से भी प्यारे मेरे प्राण नाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझे आत्म ज्योति पर हो रही है, होती जा रही है। शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। यज्ञ की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। निराकारी बाप मोहज निराकारी आत्मा को स्मृति का तिलक भी लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। प्यारे बच्चे, स्मृति स्वरूप भाव शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई पिसा रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य कुटिया में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुके हूं। मज तपस्वी आत्मा को स्मृति का अमीट तिलक लगा हुआ है, मेरा लक जगा हुआ है। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। ओम शांति शांति शांति।